और उस राम के कहे कहे तुम चले, राम के पीछे चले, तो इस अनेक पशुओं से, हिंसक पशुओं से घिरे हुए जंगल के अंदर तुमको भटकना पड़ा। यदि तुम रावण के साथ लंका में रहो तो तुम्हें बहुत बड़े सुख की, आनंद की और वस्तुओं की प्राप्ति होगी। वो दुष्टात्मा राक्षस राज रावण सीता को उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहता है जिस प्रकार से बुध ने रोहिणी को किया हो। अंत में उसने जब देखा कि सीता मानने वाली नहीं है तो भाई उसने जगत जननी सीता को अपने बाएं हाथों से उसके केश पकड़ लिए और दाहिने भुजा से उसके पैर को पकड़ लिया, उठाया और उठा करके वो वहां से जल्दी जल्दी निकलने लगा। उस समय में सीता जोर से चीखने लगी। जितने वन के देवता थे वे सब के सब वन देवता आंख बंद करके और इस दृश्य को देख नहीं सकते थे। वे बड़े खिन्न मन से इधर उधर जाकर छिप गए और मनी मन में बहुत दुखी हो गए। वह मायामयी राक्षस अपने रथ के पास सीता को ले गया और उसमें ले जाकर उसको रथ में बैठा दिया। रथ में बैठाकर उस रथ को बड़ी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ाया। रावण को मालूम था कि राम जिस दिशा में गए हैं उससे उल्टी दिशा में मुझे तेज गति से जाना है। अतएव रावण ने उस रथ को बड़ी तेज गति से चलवाया और सीता बार बार राम लक्ष्मण बचाओ त्राही पाही इस प्रकार से जोर जोर से वो चिल्ला रही है और जिस प्रकार से गरुड़ के हाथ में सर्पणी आए इस प्रकार से रावण के हाथ में आई हुई सीता लटपटा रही है। सीता बहुत जोर से सब लोगों को पुकार पुकार के कहती है जो भी मेरी बात सुनता हो वो लक्ष्मण को बोल देना, राम को बोल देना। हे महाबाहो, हे लक्ष्मण, तुम अपने भाई के मन में सदा ही आनंद देखना चाहते थे। हे लक्ष्मण, तुमको पता नहीं है एक इच्छा अनुसार स्वरूप बदलने वाला राक्षस मुझे ले जा रहा है। तुम्हारे रहते यदि ये आता तो ये रावण कब का ही पृथ्वी के ऊपर लोटपोट हो जाता। जीवितम सुखमार्तं च धर्म हेतु परित्यजन। मैं जानती हूँ कि हे राघव, जीवितम सुखमार्तं च धर्म हेतु परित्यजन। हे राघव माने हे लक्ष्मण, तुमने अपना जीवन, अपना सुख, अपना प्रयोजन सब कुछ धर्म के लिए त्याग दिया। राम, तुमने भी अपने धर्म के पालन के लिए अपने जीवन को, जीवन की बलि लगा दी, लेकिन मुझे ये अधर्म पूर्वक ले जा रहा है। मेरी रक्षा करना भी तो एक बहुत बड़ा धर्म है। इस धर्म को आप क्यों नहीं जान रहे हो? आपको पता नहीं है ये ननु नाम अविनीता नाम। आप तो जो झुकने वाले नहीं है उनको झुका देने वाले हैं, लेकिन आज ये पापी कितना बड़ा पाप कर रहा है। हे राम, इस पापी को आप क्यों नहीं शिक्षा दे रहे हैं? इस पापी को आप जल्दी से जल्दी अपने कर्म का फल यदि नहीं देंगे तो ये आगे से आगे पाप करता रहेगा। परंतु क्या करें, ये पाप भी तो अपने समय के अंदर पकता है। जैसे खेती बरसात के अंदर, जमीन के अंदर, अच्छी जमीन के अंदर बीज देने के बाद भी तत्काल उसका फल नहीं मिलता है, खेती नहीं होती है, उस समय के द्वारा वो पकती है। इसी प्रकार से पाप की ये खेती कर रहा है और समय के अनुसार ही उसका फल मिलने वाला है। ये समय भी तो आज देरी कर रहा है। हे राम, तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मुझको बचाने के लिए अपना पराक्रम क्यों नहीं दिखाते हो? हे केकई, तुम्हारा सोचा हुआ काम पूरा हो गया। ह्रियम धर्म कामस्य धर्म पत्नी यशस्विने। एक यशस्वी राजकुमार की पत्नी को किस प्रकार से एक राक्षस ले जा रहा है कोई नहीं देखता है। जनस्थान में रहने वाले हे कर्णिकारों माने कनेर के वृक्षों, तुम बोल देना कि रावण सीता को ले गया है। हे गोदावरी के हंसो सारसो, आप बोल देना कि ये रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है। जंगल में रहने वाले देवताओं आप लोग तो साक्षी हो, पृथ्वी आप साक्षी हो, आकाश आप भी साक्षी हो, वायु आप साक्षी हो, आप राम को जाकर तत्काल क्यों नहीं बोल देते हो? मैं सब देवताओं को नमस्कार करती हूँ और नमस्कार करके सबको बोलती हूँ कि आप मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ, और यदि आप लोगों में शक्ति नहीं है तो आप जाकर राम से कहो, और राम को कहकर के तत्काल राम और लक्ष्मण को इस रावण के पीछे कर दो, ये जबरदस्ती मुझे ले जा रहा है। मैं बड़ी विवश होकर के रावण के इसमें रथ में बैठी हूँ, कोई आकर मुझे छुड़ाओ, कोई आकर मुझे छुड़ाओ। इस प्रकार से जोर जोर से सीता रक्षा की याचना करती है। उस समय में कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक वृक्ष के ऊपर एक गीधराज बैठे हुए है, जो नींद के अंदर बैठे हुए थे, नींद के अंदर सोए हुए थे वृक्ष पर। धीरे धीरे उनकी आंख खुली। आंख खुलने के बाद उन्होंने देखा ये राम और लक्ष्मण को कौन पुकारती है। फिर सुना, अरे ये तो सीता की सी आवाज है। वो अपने आलस वगैरह को हटा करके और वृक्ष के ऊपर ही ऊपर टहनी पर बैठ करके और देखने लगा कि कौन है, क्या है, आकाश में देखने लगा। इतने में ही रावण वहाँ उसके वहाँ अभी तो आकाश मार्ग से नहीं ले जा रहा था, रथ पर ही उसको ले जा रहा था। तो वो सीता जब ऊपर देख रही थी सब जगह, उस वृक्ष के ऊपर जटायु पर भी उनकी दृष्टि गई। दृष्टि जाते ही सीता को ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे ससुर है, जैसे कोई मेरे पिता है जो मेरे पास में ही है। जोर से चिल्लाती हुई कि जटायु जी देखिए, ये दुष्ट रावण मुझे जबरदस्ती सूने आश्रम से ले जा रहा है, महान ले जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप जाओ और आप जाकर राम से ये बात कहो, लक्ष्मण से ये बात कहो। शब्द को सुनकर के जटायु देखने लगा नीचे की ओर कि एक रथ जा रहा है और उसमें पर्वत शिखर के समान विशाल काय वाला वो जो है पक्षी देख रहा है कि काला कलूटा मेघ के समान यहाँ इस रथ में बैठा हुआ रावण है और वह सीता को ले जाता है। तो मेघ के अंदर बिजली के समान सीता जी की शोभा हो रही है। उसको देख करके पक्षीराज जटायु रावण को धमकाते हुए कहने लगे, रावण तुम धर्म में स्थित हो जाओ, तुम सत्य का पालन करो, निंदित कर्म का त्याग करो। इतना निंदनीय, इतना महा अपराध करके तुम जीवित नहीं रह सकते। रावण मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे भी जानते होंगे, मैं गीधराज जटायु हूँ और राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वर्णोपम है। और तुमको ये बात बता दूं कि राम इंद्र के समान शूरवीर है और महाराज राम संपूर्ण लोकों के हित में लगे हुए हैं। वे दशरथ के बेटा राम यहाँ धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। उन त्रिलोकीनाथ श्री राम की धर्म पत्नी का तुम हरण करने जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत पाप की भी बात है और तुम्हारे लिए कष्ट की भी बात है। देखो, दूसरे की स्त्री का स्पर्श करना कौन से धर्म में लिखा हुआ है? राजाओं को तो सबसे ज्यादा स्त्रियों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। निवारत है, निवृत्त हो जाओ, तुम अपने नीच वृत्ति का त्याग करो। सबसे ज्यादा पाप है तो सबसे बड़ा पाप यही है, परस्त्री का इस प्रकार से हरण करना, ये तुम्हारे लिए योग्य काम नहीं है। यदि ऐसा काम करोगे तो तुम महान निंदा को प्राप्त हो जाओगे और तुमको चाहिए कि तुम तुम्हारी भी रक्षा करो, औरों की स्त्रियों की भी रक्षा करो। तुम यदि ऐसा काम करोगे तो फिर दूसरे व्यक्ति तो पाप में लगेंगे ही, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी उसका अनुसरण करने वाली प्रजा होती है। अर्थम वा यदि वा कामम शिष्टा शास्त्रे स्वनागतम। देखो, कई बातें शास्त्रों में लिखी हुई नहीं होती है, परंतु राजा के आचरण से प्रजा सीखती है। अर्थ के विषय में, काम के विषय में सारी बातें शास्त्रों में नहीं आती। राजा लोग उस बात को अपने जीवन से सब लोगों को सिखाते हैं। राजा लोग सिखाते हैं कि धर्म का क्या स्वरूप है, काम का क्या स्वरूप है और वस्तुओं का क्या स्वरूप है। इन सब को राजा ही अपने आचरणों से बताता है। लेकिन तुम महान पापी हो, बड़े चंचल हो, ईश्वरी के अंदर उन्मत्त हो और तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ये तुम्हारा पाप का स्वभाव है। ये तुम्हें कभी भी किसी प्रकार सदगति को प्रदान करने वाला नहीं होगा। तुमने यदि अपना ये स्वभाव नहीं छोड़ा तो तुमको कैसे पुण्य मिल सकता है। राम चाहे जंगल में रहे, चाहे वो अयोध्या में रहे, राम ने अपने जीवन में कभी भी तुम्हारे प्रति कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। हे रावण, तुम यदि यह सोचते हो कि हमारे जनस्थान में रहने वाले खर दूषण आदि का राम ने वध किया है और शूर्पणखा को कुरूप किया है, तो हे रावण तुम विचार करो, इसमें राम की कोई गलती नहीं है। यह तो स्वयं खर दूषण की और शूर्पणखा की गलती है और अधर्मी को दंड देना ये राम का अपना स्वभाव होता है। सीता का त्याग करो और सीता का त्याग करके और तुम धर्म के भागी बनो। अन्यथा जिस प्रकार से वृत्रासुर को इंद्र ने मारा था उसी प्रकार राम के द्वारा तुम मारे जाओगे। राम के बाण बड़े तीक्ष्ण हैं। देखो वस्त्र के अंदर आग को मत लपेटो, वस्त्र के अंदर सांप को मत लपेटो, तुम अपने गले में फांसी मत डालो। तुम्हारा राम ने कोई बिगाड़ नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी और हमारी किसी प्रकार से जानकारी है उसके अनुसार मैं तुमको सावधान करता हूँ। सब हारे सौम्य भर्तव्य यो नरम राव साधे। देखो भार वही वहन करना चाहिए जिसको मनुष्य अपने शक्ति के द्वारा वहन कर सकता है। जो हमारी वहन शक्ति के बाहर भार होता है वो यदि वो ढोएगा तो वो दब जाएगा, उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। जिसके काम करने से न धर्म होता है, न कीर्ति होती है, न यश होता है, केवल परिश्रम ही उठाना पड़ता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस कम कर्म को कभी नहीं करते हैं। रावण, मेरी उम्र 60,000 वर्ष की हो गई है। मेरे पास भी मेरे बाप दादू का बहुत बड़ा राज्य था। मैं बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होकर मैंने विचार किया कि अब मैं मरने वाला हूँ। मरता हुआ मैं अब भगवान का भजन करता हुआ मरूं। अपने वृद्धावस्था को मैं सुधारने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। रावण, मैं बूढ़ा हो गया, तुम जवान हो, तुम्हारे पास शस्त्र है, तुम्हारे पास रथ है, तुम्हारे पास कवच है, तुम्हारे पास बाण है, तुम्हारे पास तलवार है। मेरे पास इन शस्त्रों में से कोई शस्त्र नहीं है और न मेरे पास वो पहले वाली जवानी नहीं है। इसलिए फिर भी यदि तुम मेरे सामने सीता को इसी प्रकार से लेके जाना चाहते हो तो संकल्प छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। यदि तुम सीता को कहने से नहीं छोड़ते हो तो मैं बलपूर्वक सीता को छुड़ाऊंगा। जिस प्रकार से वेद को राक्षसों से छुड़ाया गया था उसी प्रकार से मैं तुम्हें सीता से छुड़ाने का प्रयास करूंगा। और यदि तुम में इतना ही बल है तो आओ मेरे सामने तुम युद्ध करो। अभी युद्ध के अंदर मैं बूढ़ा होकर के भी परास्त कर सकता हूँ। जिस प्रकार से राम ने खर को मारा है उसी प्रकार से मैं भी तुमको मारूंगा। बिना युद्ध किए मैं तुमको यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। रावण, तुम तो होते ही कौन हो? यदि इस समय देवता लोग भी तुम्हारी सहायता करें तो भी मैंने अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन सीता को मैं किसी प्रकार नहीं ले जाने दूंगा। ओ किमनु शक्यम मया कर्तुं गतौ दूरम नृपात्मजौ। इस समय में दोनों के दोनों राजकुमार बहुत दूर गए हुए हैं। मैं उनको देख रहा हूँ कि इस समय बहुत दूर है, वो आ नहीं सकते हैं। इसलिए हे नीच, तुम उससे पहले मुझसे युद्ध करो, मुझे मारो। मुझे मारने के बाद सीता को ले जा सकते हो, नहीं तो मैं तुमको जो ले जाने नहीं दूंगा। मैं तो स्वयं तुमसे युद्ध करूंगा और मैं स्वयं तुमको मारूंगा। तुम स्वयं मरने की तरफ जा रहे हो। कमल पत्राक्षी सीता को तुमने सामान्य स्त्री समझ रखा होगा। नहीं, ये सामान्य स्त्री नहीं है, एक राजा की राजकुमारी है और एक राजा की पत्नी है। मुझे सीता के लिए अपने प्राण भी न्योछावर करें तो कर देना चाहिए। तेष्ट ठहरो ठहरो रावण, अब तुम ठहरो, अब तुम मुझसे, तुम्हारा पाला पड़ गया, अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इतना कह करके और वो जटायु वहाँ वृक्ष के ऊपर से नीचे की तरफ आया है और वो क्रोध से लाल लाल आंखों वाला रावण, जिसके कानों में सोने का कुंडल है, वो अपने हाथ में शस्त्र लिया है। अब वो वृक्ष से और पृथ्वी से दूरी है ही, अपने हाथ में बाण ले लिया, बाण लेकर के, धनुष लेकर के उस पर बाण न करके, और वो बाणों की वर्षा करता है। और वे गिद्धराज जी उसके बाणों को देख करके और बड़ी सावधानी से युद्ध करते हैं। वो पाक के अंदर बाण लगाता है, गिद्धराज जी उसके बाण को खाली कर देते हैं। वो गिद्धराज जी अकस्मात ऊपर से बड़े वेग से नीचे आते हैं और रावण के हाथ में और रावण के माथे पर जोर से चोंच का प्रहार करते हैं, फिर वे उड़ जाते हैं। जब वो गिद्धराज और रावण आपस में भिड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दो माल्यवान पर्वत आपस में लड़ते हुए, वो दोनों इस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं जैसे दो सिंह लड़ते हों, दो हाथी आपस में लड़ते हों। उसने गिद्धराज के ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। गिद्धराज जी ने उन बाणों को अपने पंजों से पकड़ लिया, पंजों से पकड़ उनको तोड़ दिया और फिर उसके कभी तो माथे पर, कभी आंख पर, कभी मुंह पर, इस प्रकार से उसके ऊपर प्रहार किया चोंच का। वो निशाना लगा न सके, वो आंख के ऊपर प्रहार करके कैसे निशाना लगाए, और फिर वो गिद्धराज जी ऊपर उड़ जाए। ऐसे करके उसने 10 बाण छोड़े, बड़े विचित्र बाण थे। उन बाणों को छोड़ करके रावण ने देखा कि अब तो ये गिद्धराज मर जाएगा, परंतु अकस्मात गिद्धराज ने अपनी गति बदली और वो इस प्रकार से घूमते हुए आए कि उसका जाकर सीधा और जो शस्त्र हाथ में आया उसको भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, गिद्धराज जी ने उस समय में उनके चरणों से उसके जो है पीठ के ऊपर खूब जो है प्रहार किया, उसके माथे पर खूब चौंसकी लगाई। उस समय में उसने उसके जो गधे थे रथ में जुटे हुए, उन गधों को मार गिराया और रथ को उलट दिया। रथ का जो ऊपर भाग, ऊपरी भाग था, गिद्धराज जी ने उसको तोड़ दिया और उस रथ के अंदर बैठा हुआ सारथी था, सारथी को मार दिया। उसका छत्र था, छत्र को तोड़ दिया और उसके चमर थे, चमर को तोड़ दिया। इस प्रकार से इतना महान मणियों से गुम्फित वो रथ था, उस रथ को वहाँ पर तोड़ ताड़ करके रख दिया। उसके पहिए थे, उन पहियों को उन्होंने तोड़ दिया। सबको तोड़ने के बाद अब जो है गिद्धराज रावण के सिर के ऊपर बैठ गए और उसके सिर को अपने पंजों से यूं फाड़ने लगे। रावण एकदम घबरा गया। घबरा करके रावण ने सीता को तो एक तरफ रख दिया और वह वहाँ पर गिद्धराज जी से लड़ने लगा। आकाश में रहने वाले देवता, आकाश में रहने वाले और सब दूसरे प्राणी, वे मनी मन में साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे गिद्धराज की प्रशंसा कर रहे थे। गिद्धराज जी बहुत बूढ़े थे, अतएव वे बहुत थक भी गए थे। गिद्धराज जी की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन रावण गिद्धराज जी से भयभीत हो गया। अब रावण के पास शस्त्र के नाम से केवल एक तलवार बची थी। प्रणष्ट हत साधनम, और उसके सारे साधन नष्ट हो गए थे। तलवार उसने ली, तलवार लेकर के और वो सावधान हुआ। गिद्धराज जी ने रावण से कहा, रावण तुम्हारे कितने वज्र के समान कठोर बाण थे, वो सारे बाण तुम्हारे एक बूढ़े पक्षी के द्वारा काट दिए गए हैं। देखो तुम्हारी सारी सेना राम के द्वारा मारी जाएगी। तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे परिवार के सब लोग और तुम्हारे देश के सब प्राणी उसी प्रकार से मारे जाएंगे जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में जो है तड़ाक का जल, तालाब का जल एकदम सूख जाता है, ऐसे तुम्हारा नगर सूख जाएगा। तुम एक तरह से अपने हाथ से जहर पी रहे हो, तुम अपने हाथी के द्वारा अपने ही गले में फांसी डाल रहे हो। रावण अभी भी समय है, सीता जिस प्रकार से अभी मुक्त हुई है इसको इसी प्रकार से मुक्त रहने दो। रावण तुम चले जाओ, तुम अब सीधे जिस मार्ग से भी जाना चाहो चले जाओ, हम तुमको क्षमा करेंगे। हमारे क्षमा करने पर राम और लक्ष्मण भी तुमको क्षमा कर देंगे, और तुम जो है अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारे और हमारे दो के बीच में हुआ है। यहाँ तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि तुम सेना के साथ में युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम एक मेरे साथ युद्ध कर रहे हो। और यदि फिर भी तुम्हें युद्ध करने की इच्छा है, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं है, तो आओ मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हें उसी प्रकार मार देता हूँ जिस प्रकार से तुम्हारा खर यहाँ मरा है। रावण, क्या तुम सब राक्षसों ने दंडकारण्य में ही मरने की ठान रखी है? मरने वाला व्यक्ति अपने कर्म को नहीं देखता है कि मैं क्या कर्म करता हूँ, ये कर्म उचित है कि नहीं है। जिस प्रकार से मरने वाला व्यक्ति चाहे जाहे मलमूत्र कर देता है, चाहे जैसे वो बोल देता है, चाहे जैसी वो काम करता है, ऐसी तुम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, अतएव तुम चाहे जैसा कर्म करना चाहते हो। पापानुबंधो वही यस्य कर्मणे कोनु तत्त्वमान कुर्वीत लोकाधिपति स्वयंभूर भगवान अपि। जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप उसके लिए बंधन कारक होता ही है, चाहे स्वयंभू ब्रह्मा भी क्यों न आ जाए। आओ, तुमको युद्ध करना है तो मुझसे युद्ध करो। इस प्रकार से जटायु ने उनको ललकारा, और जटायु जी महाराज रावण के पीठ के ऊपर आकर के और बड़े वेग से उसके पीठ के ऊपर बैठे। रावण एक बार धक्का सा खा करके जमीन के ऊपर पसर गया, उसका मुंह धूल में धूल के अंदर मिल गया। रावण घबराया, और अंत में भाई रावण ने अपनी तलवार ली, तलवार लेकर के उसने गीद राज के पांख थे उस पांख को काट दिया, और दूसरी पांख को भी काट दिया। दोनों पंखों के कट जाने के बाद गीद राज एकदम छटपटाए, छटपटा करके और गीद राज नीचे गिर गए। इतने में ही रावण ने सीता जी को पकड़ लिया। सीता जी उस समय में बहुत इधर उधर वृक्षों के पीछे भगी, कभी उस वृक्ष के पीछे, कभी उस वृक्ष के पीछे। जितनी सीता की शक्ति थी सीता जी ने बचने का पूरा प्रयास किया। मरते मरते भी जटायु जी ने यही कहा, सीते तुम भग चलो, भग चलो, भग चलो। लेकिन सीता कितनी भक्ति, अभी तो राम और लक्ष्मण बहुत दूर थे, कुटिया से अभी दूर आ गए थे। इतने में भाई रावण ने जाकर सीता को पकड़ लिया, और सीता को पकड़ करके, और भाई वो वाम बाहुं दश ददा, सीता को पकड़ लिया। अभी जटायु जी जो है थोड़ा सा बल रखते थे। इस प्रकार से जटायु जी जब बल रख रहे थे तो जटायु जी एक बार फिर वापस उड़े, और उड़ करके रावण की जो भुजाएं थी वो भुजाएं अपने चौं से पकड़ पकड़ कर फेंकने लग गए। चौं से यूं भुजा भगे, बाई 10 भुजाएं थी, वो जब 10 भुजा यूं फेंक फेंक करके फेंकने लगे, पर करे क्या, वहां तो वापिस भुजा आ जाए। इस प्रकार से जब वो भुजाए आ जाए तो गीतराज जी हताश हो गए, और इधर भाई उनके पंख टूट ही गए थे, वो एकदम अब मरणासन्न होकर के जमीन के ऊपर गिर गए। और इधर रावण ने सीता को पकड़ लिया, सीता खूब रोई और चिल्लाई, परंतु वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था। गीतराज जी को इस अवस्था में देख करके सीता जी के मन में अपार कष्ट हुआ। सीता जी चिल्लाती चिल्लाती कहने लगी, ननूनम राम जानासी, हे राम तुमको इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे पर कितनी आफत आई हुई है। हे राम, आपको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जटायु जी ने मेरे लिए प्राण त्याग किए हैं। त्राही मामद्य काकुस्त, हे काकुस्त, हे राम मेरी रक्षा करो, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, देखो आप लोग आकर मुझे बचाओ, इस रावण से मुझे बचाओ। उस समय में रावण सीता से कहने लगा कि सीते, यहाँ कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। वो सीता उस समय में वहां मुंच मुंच राम राम, छोड़ो छोड़ो राम बचाओ, इसके द्वारा ऐसी विलाप करने लगी है कि सब प्राणियों के मन में बड़ी दया पैदा हो गई है। वायु भी उस समय चलता नहीं है, सूर्य भी निष्प्रभ हो गए हैं, कोई रावण के सामने आकर युद्ध करने के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस समय में देवता लोगों के स्वामी ब्रह्मा जी आकाश में छिप करके देख रहे हैं और क्या हो रहा है देख करके देवताओं को बताया, कृत्यम कार्यम हो गया हो गया। आखिर रावण सीता को आकाश मार्ग से अपने भुजाओं में लेकर लंका की ओर प्रस्थान कर चुका है। इस बात को सुनकर के देवता लोग और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और दुखी भी हो गए। प्रसन्न तो इसलिए हुए कि आज अब राम से इसने बैर विरोध ले लिया, रावण मारा जाएगा। व्यथित इसलिए हुआ कि सीता का जो कष्ट था और राम का सीता का जो वियोग था वो उनसे देखा भी नहीं जाता था। ये दोनों ही भाव उनके मन में पैदा हुए। इधर सीता आकाश से नीचे देखती है, कोई राम और लक्ष्मण कहीं भी मिल गया है, कोई भी प्राणी मिल गया है, इसलिए वो राम और लक्ष्मण बोल रही है। बार बार कहती है कि भाई कोई मेरी आवाज सुनता हो तो राम से और लक्ष्मण से कह देना कि सीता को रावण ले गया है, सीता को रावण ले गया है। उस समय में रावण के हाथों में शरीर में ये सीता ऐसी लग रही थी जैसे काले मेघों के अंदर बिजली की शोभा होती हो। उद्रतेन तस्त्रेण तस्या पीतेन रावण अधिकम परिबभ्राज गिरिर्दीप्त इवाग्निना। आखिर तो रावण की शोभा सीता जी के हाथ में रहने पर ऐसी मालूम देने लगी जैसे किसी काले पर्वत पर आग लग गई हो। अग्नि शिखा के समान सीता जी की शोभा है और पर्वत के समान रावण है। उस समय में उस सीता जी के तस्या परम कल्याण्यास्ताम्राणि सुरभीणि च पद्म पत्राणि वैदेया अभ्यकीर्यन्ते रावणम्। रावण के शरीर के ऊपर सीता जी ने जो मालाएं पहन रखी थी, मालाओं का फूल था उसके शरीर में गिर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि किसी पर्वत के ऊपर वृक्ष और वृक्षों से फूल गिरते हों। उसका पीतांबर, सीता का जो पीतांबर था वो ऐसे लग रहा था रावण के वहां कि जिस प्रकार से उगता हुआ सूर्य का लाल वर्ण होता है, ऐसे रावण का और रावण के ऊपर ये ललाई का प्रभाव पड़ रहा था। नरराज बिना रामम, राम के बिना सीता की शोभा नहीं हो रही है, जिस प्रकार से नाल के बिना पंकज की शोभा नहीं होती, कमल की शोभा नहीं होती, इस प्रकार से अब ये रावण सीता जी को ले जा रहा है। रावण का ललाट, रावण का केश और रावण का शरीर बड़ा विशाल है और बड़ा डरावना है। सीता उनके बीच में बड़ी कष्ट पा रही है। सीता का रोना और सीता का दुखी होना ऐसे लगता है जैसे कोई सूर्य ग्रहण आ गया हो अथवा जैसे कोई चंद्र ग्रहण आ गया हो। वो जो है स्वर्ण वर्ण वाली सीता और काला कलूटा रावण, वो ऐसा लगता है कि मानो कोई गजराज है उसने नील कमल धारण कर लिया हो। वो पद्म पीता सीता और वो रावण बदल के समान, ऐसा लगता है कि वो तो बदल है और सीता बिजली है। ये उपमाएं बहुत आती हैं। और सीता उस समय में अपने आभूषणों के उद्घोष से ऐसा मालूम दे रही है कि जैसे बादल जो है उद्घोष करते हो। सीता के उत्तमांग से पुष्प की वृष्टि होती है और पृथ्वी के ऊपर जा करके वो फूल गिर रहे हैं। रावण के वेग से वो पुष्प वृष्टि कई बार रावण में ही रह जाती है। रावण इतने वेग में चलता है कि वो फूल घूम फिर करके रावण में ही रह जाते हैं, बहुत से फूल नीचे गिर जाते हैं। और उस समय में कई सीता जी के आभूषण हैं, वो आभूषण यहाँ सीता जी के शरीर के द्वारा यूं हिलने पर नीचे गिरते हैं और कई आभूषण रावण के शरीर के अंदर ही रह जाते हैं। उस समय में रावण की ऐसी शोभा हो रही है जैसे कोई काला हाथी हो और उसको सोने की सांकल से बांध दिया जाए, इस प्रकार से सीता जी का सीता जी का हाथ में रहकर उसकी ऐसी शोभा हो रही थी। आकाश मार्ग से रावण सीता को ले जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि आकाश से नीचे तारे गिरते हों, जब सीता के आभूषण गिरते थे तो ऐसा मालूम देता था कि आकाश मार्ग से अब कोई गंगा जी है, वो पहले रावण के हाथ में आई है और अब जमीन पर आने वाली है। इस प्रकार से ये दिखाई दे रहे थे। वहाँ नाना प्रकार के पक्षी वो मानो ये बता रहे थे कि सीता जी डरो मत, ये समय का प्रभाव है, आप इसको सह लो। इस प्रकार से मानो वो पक्षी चुप रह करके सीता जी को सांत्वना दे रहे थे। कमलनिया भी एकदम मुरझाई हुई ऐसी कह रही थी, सीता जी आपने हमसे बहुत स्नेह किया, आज आप